अध्याय दो, भाषा के विकास सोपान। आंगिक भाषा। विकासवाद के अनुसार मनुष्य भी एक दिन अन्य पशुओं की कोटि का ही जीव था, अर्थात उसकी चेष्टाएं पशुओं जैसी ही होती थीं। भाषा नाम की वस्तु उसे उपलब्ध नहीं थी और वह आंगिक चेष्टाओं या इंगितों की सहायता से अपनी बात अपनी योनि के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाता था। पशुओं में भी कुछ अधिक बुद्धि संपन्न होती हैं और कुछ कम, जैसे बैल की अपेक्षा कुत्ते में कुछ अधिक बुद्धि दिखती है और गधे की अपेक्षा बंदर में। मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि संपन्न था, इसमें कोई संदेह नहीं, अतः उसकी चेष्टाएँ भी अधिक अर्थ द्योतक होती होंगी। बंदर आनंद के समय किलकारी भरते हैं, क्रोध के समय किटकिटाते हैं, यदि कोई भगाने की चेष्टा करता है तो उसे डराने के लिए घुड़कते हैं। इस तरह किलकारी भरना, किटकिटाना और घुड़कना उनके मनोभावों की सूचक चेष्टाएं हैं। कुत्ता मालिक को देखकर अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए पूंछ हिलाता है, उसके पैर से सटने की चेष्टा करता है। मनुष्य भी ऐसी चेष्टाएं करता होगा, क्योंकि तब तक उसमें वाणी का विकास नहीं हुआ था। आंगिक चेष्टाओं या इंगितों से भाव का द्योतन तो अवश्य हो जाता है, किंतु वह जीवन निर्वाह के स्थूल उपयोग तक ही सीमित है। भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध आदि व्यक्त करने के लिए सिर, आँख, पैर, हाथ आदि की सांकेतिक चेष्टाओं से मनुष्य काम लेता रहा होगा। पशुओं में सामुदायिकता की जो सहज वृत्ति काम करती है वह आदि मानव से भी रही होगी। शिकार के लिए अकेले जाने की अपेक्षा झुंड में जाना सुविधा और सुरक्षा दोनों ही दृष्टियों से अभिमत रहा होगा। झुंड बांधने के लिए वह इतर मनुष्यों को कुछ अस्पष्ट ध्वनि के साथ हाथ या सिर हिलाकर इशारा करता होगा। दूसरे मनुष्य भी स्वीकृति में सिर हिलाते होंगे या कुछ ऐसी चेष्टाएं करते होंगे। इस तरह आंगिक चेष्टाओं से उसके जीवन का योग क्षेम चलता होगा। उसकी आंगिक चेष्टाएं ही अर्थबोधन का प्रारंभिक रूप और इस प्रकार भाषा का प्रथम सोपान है। इस भाषा की सीमाएं स्पष्ट हैं। भाला, इंगित या आंगिक भाषा अत्यंत स्थूल, कामचलाओं, जीवन धारण की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित और भाव या विचार के सम्यक वहन की शक्ति से रहित होती है। भाषा भूख प्यास मिटाने के लिए भोजन आदि मांग लेना उससे संभव हो सकता है, किंतु किसी समस्या का समाधान, विचार या संप्रेषण, काव्य का निर्माण आदि उससे संभव नहीं है। दूसरी सीमा यह थी कि इसका प्रयोग प्रकाश में ही संभव था। अंधकार में आंगिक चेष्टाओं से कोई काम नहीं लिया जा सकता। यदि प्रकाश नहीं है और हम हाथ पैर हिलाते भी हैं तो उसे कोई देख नहीं सकता और बिना देखे हमारा अभिप्राय कैसे समझ सकता है। तीसरी चीज यह है कि आंगिक भाषा सामुख्य सापेक्ष होती है, अर्थात जब तक वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने हैं तभी तक इसका प्रयोग सार्थक हो सकता है। यदि कोई मुंह फेर कर खड़ा हो और हम आंख या हाथ से कुछ इशारा करें तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आंगिक भाषा आँख की भाषा है और आँख का व्यापार प्रकाश में ही संभव है, इसलिए प्रकाश और सामुख्य ये दोनों आंगिक भाषाओं की बोधगम्यता के लिए अनिवार्य हैं। आंगिक भाषा इन तीन बड़ी सीमाओं से आबद्ध थी, अतः मनुष्य की सांस्कृतिक प्रकृति के सर्वथा अयोग्य थी। आंगिक भाषा से संपन्न अन्य जीवों का सांस्कृतिक या बौद्धिक विकास कहाँ हो पाया है? गधों ने कोई काव्य नहीं रचा, बैलों ने किसी दर्शन का प्रणयन नहीं किया, बंदरों के लिए वैज्ञानिक आविष्कार संभव नहीं हो सका, घोड़ों में चित्रकला का विकास नहीं हुआ, ऊँटों ने ताजमहल नहीं खड़ा किया। वाचिक भाषा। आंगिक भाषा से आगे बढ़कर वाचिक भाषा तक पहुँचना मानव इतिहास की क्रांतिकारी उपलब्धि थी, जहाँ आंगिक भाषा इंगित स्थलों तक ही सीमित थी, वहाँ वाचिक भाषा भाव और विचार के संप्रेषण की असीम संभावनाओं से संपन्न थी। मनुष्य की वृत्तियाँ केवल खाने पीने तक सीमित नहीं रहीं, वह भाषा की सहायता से सूक्ष्म से सूक्ष्म और गूढ़ से गूढ़ बातें दूसरों तक पहुंचाने में समर्थ हो गया। उसके चिंतन और विचार की परिधि इतनी विस्तृत हो गई कि उसमें भूगोल खगोल सब उठ गए। वाचिक भाषा उपर्युक्त तीनों सीमाओं से मुक्त थी जो आंगिक भाषा में विद्यमान थी। वाचिक भाषा का प्रयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म बौद्धिक अभिव्यंजना के लिए हो सकता था। उससे सूची भेद्य अंधकार में भी काम लिया जा सकता था और अभिप्राय पूरी स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता था। उसके लिए प्रकाश की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तीसरी चीज यह कि सामुख्य भी अनिवार्य नहीं था। कोई किसी और देखे या न देखे बातें उसकी सुन सकता था। इस प्रकार आंगिक भाषा की तुलना में वाचिक भाषा निश्चय ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पर मनुष्य इसी से संतुष्ट नहीं रहा। सभी दिशाओं में मनुष्य की प्रगति का एक ही मूल आधार है, वह है उसकी जिज्ञासा, जिसे दूसरे शब्दों में असंतुष्टि कह सकते हैं। वह अपनी स्थिति से किसी संतुष्ट नहीं होता, सदा आगे बढ़ना चाहता है, सदा ऊंचे चढ़ना चाहता है और जितनी दूरी तय कर लेता है उससे आगे की दूरी को अपना लक्ष्य बनाना आरंभ कर देता है। वाचिक भाषा की त्रुटियाँ उसे खलती रहीं, एक तो उसका अस्थायित्व और दूसरे देश काल से आबद्ध होना। वाचिक भाषा उच्चारण के समय ही अपना काम करती है। जैसे जैसे ध्वनि का उच्चारण होता जाता है वैसे वैसे वह नष्ट होती जाती है। इसलिए घंटे भर पहले की भाषा से घंटे भर बाद या आज के उच्चरित भाषा से कल काम नहीं लिया जा सकता। मनुष्य में स्थायित्व प्रदान करने की अदम्य लालसा होती है। दीर्घ जीवन की कामना उसी का प्रतिक्षेप है। दीर्घ जीवन की कामना केवल शारीरिक दृष्टि से ही उसे अभिप्रेत नहीं, वह अपनी प्रत्येक उपलब्धि में दीर्घजीवी बनना चाह रहा है। किसी दूरस्थ प्रियजन तक अपनी बात पहुंचाना वाचिक भाषा के लिए संभव न था और न आगे की पीढ़ी के लिए अपनी बात सुरक्षित रख पाना। मनुष्य की सतत अन्वेषण पट बुद्धि ने इस त्रुटि को दूर करने के लिए लिपि का आविष्कार किया, जिससे वाचिक भाषा को लिखित रूप दिया जा सके। लिखित भाषा आग चक्का और लिपि के आविष्कार को मानवता के प्रगति के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी सोपान माना गया है। आग से भोजन पकाने की मौलिक आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं हुई, वह शक्ति का आविर्भाव भी हुआ जो संचार की स्थिरता को गतिशीलता में बदल सके। जल तेल या बिजली की सारी शक्तियाँ उसी आग्नेय शक्ति का रूपांतर हैं जो आज की गति और प्रगति का साधन बनी है। चक्के का आविष्कार उस गति का दूसरा पहलू है। किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक घसीट कर ले जाना एक सीमा से भीतर ही संभव था और अधिक भारी चीज घसीटी भी नहीं जा सकती थी। साथ ही उसमें सामूहिक श्रम की अपेक्षित था। चक्के ने इन सारी सीमाओं को समाप्त कर दिया। भारी से भारी चीज को अधिक से अधिक दूर तक एक व्यक्ति के लिए भी ले जाना संभव हो गया और आज उसी चक्के की करामात रेल मोटर से लेकर विमान तक में देखी जा सकती है। और तीसरी चीज थी लिपि, जिसकी सहायता से क्षणभंगुर वाचिक भाषा चिरस्थायी बन गई। एक पीढ़ी की उपलब्धि दूसरी पीढ़ी के लिए सुलभ हो गई। युग विशेष का ज्ञान अनंत काल के लिए सुरक्षित हो गया। लिपि का विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। यहाँ इतना ध्यान में रखना आवश्यक है कि साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में मनुष्य की समस्त बौद्धिक उपलब्धियों का सबसे बड़ा आधार लिपि या भाषा का लिखित रूप है। वाचिक भाषा कान की भाषा थी, किंतु लिपि के आविष्कार के बाद आँख की भी एक भाषा बन गई। इसमें कान की कोई आवश्यकता न रही। अब तो लिपि का विकास नेत्र की सीमा पार कर गया है और नेत्रहीनों की ब्रेल नामक स्वतंत्र लिपि हो गई है, जिसमें वे उसी उन्मुक्तता से लिख सकते हैं जिस तरह चक्षुष लिपियों की सहायता से चक्षु संपन्न। लिपि के कारण ही हजारों वर्ष पहले आविर्भूत व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि की रचनाएं हमें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार हजारों मील दूर के लेखकों और कवियों की कृतियां सहज ही हमारे सामने आ जाती हैं। मिल्टन या शेक्सपियर हमारे लिए उतने ही सुलभ हैं जितने प्रसाद या प्रेमचंद। भाषा के क्षेत्र में देश और काल के व्यवधान को मिटा देना लिपि की सबसे बड़ी देन है। जैसा पहले कहा गया है, लिपि ने वाचिक भाषा के क्षण स्थायीता को चिर स्थायीता में परिवर्तित कर दिया और ज्ञान के संचय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक व्यक्ति के ही चिंतन और विचार को बार बार दोहराते रहने की समस्या का अंत हो गया। अब एक व्यक्ति के चिंतन को आधार बनाकर दूसरा व्यक्ति उससे आगे बढ़कर कुछ कह सकता था, किंतु मनुष्य लिपि की उस क्रांतिकारी उपलब्धि से भी तृप्त नहीं हुआ। यांत्रिक भाषा। लिपि में स्थायित्व भले ही हो, उसकी सबसे बड़ी सीमा यह थी कि भाषा का रूप उसमें निर्जीव हो जाता है। आज बहुत बार यह इच्छा होती है कि कालिदास, विद्यापति या सूर के मुख से ही हम उनकी कविता का पाठ सुन पाते, किंतु लिपि उनकी वाणी को प्रस्तुत करने में अक्षम है। बुद्ध की शांत स्निग्ध वाणी की हम कल्पना भी कर सकते हैं, अनुभव नहीं। शंकराचार्य के मुख से मंदाकिनी की धारा के समान संस्कृत का प्रभावशाली प्रवाह कैसे निश्चित होता होगा। भाषा की इस निर्जीवता को दूर करने के प्रयास से और ध्वनि की यथावत अंकित करने की कामना से यांत्रिक भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। आज नाना प्रकार के रिकॉर्डिंग यंत्रों के द्वारा हम किसी की ध्वनि को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। महात्मा गांधी को दिवंगत हुए 52 वर्ष हो गए, किंतु आज भी उनकी वाणी टेप रिकॉर्डर आदि की सहायता से उसी रूप में हमारे कानों में गूंज उठती है जिस रूप में उनके जीवन काल में गूंजती थी। यांत्रिक भाषा ने कई रूप धारण किए हैं, जैसे पहले ध्वनि की रक्षा और स्थायित्व का काम ग्रामोफोन रिकॉर्ड से लिया जाता था, अब वह काम टेप रिकॉर्डर और कॉम्पैक्ट डिस्क में भी लिया जाने लगा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वक्ता की ध्वनि को पहुंचाने का काम टेलीफोन करता है। पहले यह काम लिपि टेलीग्राफ के द्वारा ही संभव था, आज तो लिपि भी टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, फैक्स आदि की सहायता से भेजी जा सकती है। तार से लिखित भाषा का रूप सामने आता था तो टेलीफोन से वाचिक भाषा का, एक नेत्र का विषय था तो दूसरा श्रोत्र का। टेलीविजन और चित्रपट से दोनों का समन्वय हो गया, हम रूप और शब्द दोनों को एक साथ ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात एक साथ नेत्र और श्रोत्र दोनों की तृप्ति हो जाती है। रेडियो ने तार का बंधन भी हटा दिया और उसका उद्देश्य केवल संवाद प्रेषण ही नहीं, मनोरंजन भी हो गया। टेलीफोन या तार टेलीग्राफ में तार बिछाने की आवश्यकता थी। समुद्र और पर्वत का व्यवधान पड़ जाने पर यह काम पहले असंभव था और आज भी दुष्कर है। बेतार ने तार की सीमा को और उसके कारण होने वाली असुविधा को समाप्त कर दिया। इस तरह आधुनिक विज्ञान ने भाषा के समक्ष सीमाओं को दूर कर उसे मनुष्य के लिए स्थायी ही नहीं, सजीव और सुलभ भी बना दिया, जिसकी कल्पना भी हमारे पूर्वज नहीं कर सकते थे। आज वाचिक और लिखित के साथ साथ भाषा का यांत्रिक रूप भी अध्ययन का विषय बन गया है, क्योंकि उससे संप्रेषण संबंधी प्राविधिक आविष्कारों को विकसित करने में अत्यंत सहायता मिलती है। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कंप्यूटर की बहुआयामी विकास के साथ भाषा की भी एक नई दिशा मिली है। कंप्यूटर की सहायता से लिखित भाषा का संप्रेषण तो सहज हुआ ही है, लिप्यंतरण की प्रक्रिया भी बहुत आसानी से हो जाती है। भाषा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वह है यंत्र द्वारा अनुवाद करने का प्रयास। इसमें कुछ सफलता तो मिली है, पर वह अत्यंत सरल वाक्यों के संदर्भ में है। इस दिशा में कोई सार्थक सफलता प्राप्त होने की राह में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है भाषा का जीवंत और स्पंदन युक्त होना। प्रत्येक भाषा की अंतर्निहित नियमावली अलग अलग होती है। इतना ही नहीं, हर समाज की भाषा उसकी संस्कृति, इतिहास और भूगोल से भी प्रभावित होती है। उच्चरित भाषा में काको द्वारा अर्थ की पूरी तरह बदल जाता है और फिर प्रत्येक भाषा के मुहावरे भी होते हैं जिनका शब्दानुवाद करने मात्र से काम नहीं चलता। इस प्रकार यंत्रानुवाद कंप्यूटर वैज्ञानिकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञों के साथ भाषा विज्ञानियों, मानव विज्ञानियों, समाज विज्ञानियों, मनोविज्ञानियों आदि को मिलकर काम करना होगा। फिर भी एक भाषा का दूसरी भाषा में पूर्ण अनुवाद हो सकेगा, यह कष्ट कल्पना प्रतीत होती है, क्योंकि भाषा अपने समाज का दर्पण होती है और रंग बदल देने से मनुष्य की प्रकृति नहीं बदल जाती। उर्दू का एक शेर देखें, रंज की जब गुफ्तगु होने लगी, आप से तुम से तुम होने लगी। अगर इस शेर का अनुवाद अंग्रेजी में करें तो कैसे करेंगे, जब उस भाषा में मध्यम पुरुष का सर्वनाम सिर्फ यूं होता है, आप, तुम और तू तीनों के लिए केवल यू का प्रयोग करने पर वह बात कैसे कही जाएगी जो इस शेर में कही गई है। हाँ, यांत्रिक अनुवाद से अगर वैज्ञानिक तथ्यपरक साहित्य का अनुवाद भी संभव हो जाए तो वह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।